एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियाँ। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के इस अंक के लिए हमने चुनी है साल 1915 में रिकॉर्ड की हुई गजल, ये जलसा ताजपोशी का मुबारक हो मुबारक हो। जानकी बाई की आवाज, उन्हीं का ये कलाम है और उन्हीं की मौसिकी। इस मुबारकबादी मुजरे के बहाने आइए जाने ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग की शुरुआती मशहूर कलाकारों में एक जानकी बाई के जीवन की कहानी। इस गजल की रिकॉर्डिंग से 4 वर्ष पहले ब्रिटिश काल के किस महत्वपूर्ण समारोह के परिप्रेक्ष्य में इसकी रचना करवाई गई थी, उस सजीव प्रस्तुति में जानकी बाई के साथ किस मशहूर गायिका ने इस गजल में आवाज मिलाई थी, क्यों जानकी बाई को 56 छुरी वाली कहा जाता है, इस रिकॉर्ड के 30 साल बाद किस फिल्मी गीत में इस गजल के मतले की पहली लाइन का प्रयोग गीतकार एहसान रिजवी ने किया था, ये सब कुछ आज के इस अंक में। परिकल्पना सजीव सारथी की, शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का, और आज इसका वाचन कर रही हूँ मैं संज्ञा टंडन। बाहर शहर के सुनसान शहरों पर झमाझम बारिश हो रही है। कंक्रीट की सड़कों पर किनारे लगे गुलमोहर के पेड़ से उसके ज्वलंत फूल बिखर रहे हैं। अंदर ग्रामोफोन प्लेयर पर घूमती हुई एक पुरानी घिसी हुई रिकॉर्ड से मल्हार के सुर बिखर रहे हैं। तकनीकी रूप से रिकॉर्डिंग कर्कश होने के बावजूद गायिका की अपनी कला में निपुणता के कारण वो ध्वनियां सुंदर बन पड़ी हैं। उसकी आवाज की चंचलता, गायकी की बरौक हरकतें और उसकी अदायगी में नियंत्रित उतार चढ़ाव से पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड की अस्पष्ट रिकॉर्डिंग एक रोमांचकारी समा बांधने में सक्षम हुई है। रुमझुम बदरवा बरसे के समापन पर गायिका अपना नाम घोषित करती है, माई नेम इज जानकी बाई फ्रॉम इलाहाबाद। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद की जानकी बाई की, जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड के शुरुआती समय काल की एक नामचीन गायिका ही नहीं बल्कि एक अच्छी कवयित्री भी रही, जिन्होंने असाधारण परिस्थितियों से उठकर अपना नाम बनाया, एक ऐसा नाम जो इतिहास में दर्ज है, अपनी चमकदार आवाज के रूप में यादगार है। कोठों पर गायन और नृत्य प्रस्तुत करने वाली कई प्रसिद्ध कलाकारों के विपरीत जानकी बाई का जन्म कलाकारों के परिवार में नहीं हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जानकी बाई का जन्म वर्ष 1875 या 1880 में बनारस में एक पहलवान युवक के घर हुआ था। जानकी बाई के पहलवान पिता ने अपनी किसी प्रेमिका के लिए जानकी और उसकी माँ मानकी को छोड़ दिया। अपने पति से अलग होने के बाद मानकी और जानकी का जीवन कठिन हो गया। ऐसे में उनके एक परिचित सज्जन ने उनकी मदद की। मानकी और वो सज्जन अच्छे दोस्त बन गए और मानकी को उनसे लगाव होने लगा। इसी बात का फायदा उठाकर उस मित्र ने धोखे से मानकी और जानकी को बहलाया फुसलाया और अपने साथ इलाहाबाद ले आया और दोनों को एक कोठे पर बेच दिया, यानी मानकी को वेश्या बनाने पर मजबूर कर दिया। उस समय जानकी की उम्र मात्र 7 वर्ष थी। वहीं मानकी को अपनी बेटी जानकी की संगीत के प्रति रुचि और प्रतिभा का पता चला और उन्होंने हसू खान को जानकी के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। जानकी ने फारसी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी सीखी और निसंदेह इस ज्ञान ने उनके संगीत प्रदर्शन को काफी प्रभावित किया। बाद में अपने जीवन में जानकी बाई ने कविताएं लिखी और अंततः अपना खुद का एक दीवान या संग्रह भी प्रकाशित किया। हसू खान व अन्य उस्तादों के प्रशिक्षण ने अद्भुत काम किया और किशोरी जानकी जल्द ही एक स्टार बन गई। न केवल कोठों और दरबारों में जानकी बाई को प्रसिद्धि मिली बल्कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड कंपनियों ने भी उनमें रुचि दिखाई। दोस्तों, हम आपको इस अंक में आज जो जानकारियां दे रहे हैं वो सब हमने एकत्रित की हैं द सोसाइटी ऑफ इंडियन रिकॉर्ड कलेक्टर्स संस्था की त्रैमासिक पत्रिका द रिकॉर्ड न्यूज के अप्रैल 1994 में प्रकाशित अंक से। ये तमाम जानकारियां अत्यंत विश्वसनीय है, जो दर्शकों के अथक शोध और प्रयासों का सुखद परिणाम है। जानकी बाई की प्रथम रिकॉर्डिंग द ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर लिमिटेड कंपनी के लिए दिल्ली में मार्च 1907 में हुई थी। रिकॉर्डिस्ट थे विलियम गाइसबर्ग। इस रिकॉर्डिंग सत्र में जानकी बाई की गाई हुई 22 रचनाएं रिकॉर्ड हुई, जिनके लिए उन्हें 250 रुपए मिले थे। कहा जाता है कि जब उनके रिकॉर्ड्स बाजार में बिक्री के लिए जारी हुए, तब बिल्कुल हॉट केक की तरह सारे बिक गए। नतीजा ये हुआ कि जानकी बाई की डिमांड बढ़ गई। 1908 में कलकत्ते में उन्हें 24 गीत रिकॉर्ड करने के लिए 900 रुपए मिले। 1909 में दिल्ली में उन्हें 22 गीत गाने के लिए 1700 रुपए मिले। 1911 में कलकत्ते में जानकी बाई को 20 गीत गाने के लिए 3000 रुपए मिले, जो उस जमाने में बहुत भारी रकम थी। इसी से जानकी बाई की प्रतिभा और कामयाबी का अनुमान लगाया जा सकता है। हजारों की संख्या में उनके रिकॉर्ड्स देश भर में बिकने लगे। दोस्तों, जानकी बाई के जीवन के सफर का हाल बयां करते हुए हम साल 1911 तक आ पहुंचे हैं। यही वो साल था जब यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश डोमिनियन के राजा और रानी के रूप में जॉर्ज फिफ्थ, यानी कि जॉर्ज द फिफ्थ और उनकी पत्नी मैरी का राज्याभिषेक 22 जून 1911 को वेस्टमिंस्टर एबे लंदन में संपन्न हुआ था। ये 20वीं शताब्दी के दौरान आयोजित चार ऐसे आयोजनों में से दूसरा था। 11 नवंबर 1911 को किंग जॉर्ज द फिफ्थ अपनी पत्नी के साथ भारतीय साम्राज्य के लिए रवाना हुए। 2 दिसंबर को बंबई पहुंचकर वे एक औपचारिक राज्य प्रवेश के लिए 7 दिसंबर को ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली दरबार 22 दिसंबर को था, जिसमें अनुमानतः 1,00,000 लोग शामिल हुए थे। 10,000 सरकारी अधिकारी इसमें शामिल हुए थे और 50,000 लोगों के बैठने का आयोजन किया गया था। शाही जोड़े का राज्याभिषेक वस्त्रों में आगमन हुआ। किंग जॉर्ज द फिफ्थ ने 8 मेहराबों वाला भारत का शाही मुकुट पहना हुआ था, जिसमें 6,100 हीरे जड़े थे, और जो राज्याभिषेक संदेश अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया गया, जिसका उर्दू में अनुवाद असिस्टेंट हेरोल्ड कैप्टन मलिक उमर हयात खान ने पढ़ा था। फिर राजा रानी के मनोरंजन के लिए देश भर के जाने माने कलाकारों के कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, और इन जाने माने कलाकारों में 2 ग्रामोफोन स्टार्स भी थे। जानते हैं ये कौन थे? गौहर खान और जानकी बाई। उस समय की इन 2 अत्यंत लोकप्रिय गायिकाओं को निमंत्रण मिला दिल्ली दरबार में अपने प्रदर्शन से ब्रिटिश राजा और रानी को मुबारकबाद देने का, और दोनों गायिकाओं ने पेश किया मुबारकबादी गजल, ये जलसा ताजपोशी का मुबारक हो मुबारक हो, बे इंतहा खुशी से सबका है कहना मुबारक हो मुबारक हो। मुबारकबादी रचनाओं का चलन हमारी संस्कृति में शुरू से ही रहा है। राजा महाराजाओं, नवाबों और शासकों की शान में उनके पारिवारिक या प्रशासनिक उपलब्धियों को मनाने के लिए ऐसी रचनाओं को गाए जाने का चलन एक लंबे समय से रहा है। मुजरा शैली में गाई हुई इस रचना को दिल्ली दरबार के कोरोनेशन सभा में प्रस्तुत करने के लिए ऐसा सुना जाता है कि दोनों गायिकाओं को 100-100 सोने के सिक्के मिले थे। दोस्तों, ये बात तो हो गई गौहर जान और जानकी बाई द्वारा गाई हुई इस गजल की सजीव प्रस्तुति की कहानी। इसे उस दिन दिल्ली दरबार में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने सुना होगा, लेकिन देश भर के लोगों को इस गजल को सुनने के लिए 4 साल और प्रतीक्षारत रहना पड़ा। जी हाँ, इस गजल को ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर जानकी बाई की एकल आवाज में उतारा गया साल 1915 में। जनवरी 1915 में कलकत्ता में ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड कलकत्ता के ने एक रिकॉर्डिंग सत्र का आयोजन किया ग्रामोफोन कंसर्ट रिकॉर्ड हिज मास्टर्स वॉइस के लेबल से। आर्थर स्पॉटिसवुड क्लार्क की निगरानी में बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हुई, जिनमें जानकी बाई की भी बहुत सारी थी, और उनमें ये जलसा ताजपोशी का मुबारक हो भी शामिल था। मुद्रण के बाद रिकॉर्ड जारी हुआ उसी साल अप्रैल महीने में। रिकॉर्ड लेबल पर इसे गजल मुबारकबादी श्रेणी में रखा गया। इस प्रकार जानकी बाई की लिखी और गाई इस गजल का अत्यंत ऐतिहासिक महत्व रहा है, और ग्रामोफोन संगीत के इतिहास की ये एक अत्यंत कीमती रिकॉर्डिंग है। इसे आप सब YouTube पर सुन सकते हैं। हालांकि रिकॉर्डिंग क्वालिटी अत्यंत खराब है, जिस वजह से गजल के अल्फाज मुश्किल से ही समझे जा सकते हैं। पूरे 3 दशक बाद फिल्म और फिल्म संगीत के दौर में 1945 में एक फिल्म बनी थी नगमाए सहरा इस शीर्षक से। इसमें एहसान रिजवी ने गीत लिखे और जिसमें सी रामचंद्र का संगीत था। इस फिल्म में खान मस्ताना, हमीदा बानो, चितलकर और साथियों का गाया हुआ एक गीत था, ये जलसा ताज पोशी का, बड़ी अच्छी ये दिन अच्छा, गरीबों की दुआ तुझे रखे, हरदम भला फूला, मुबारक हो मुबारक हो। और दोस्तों यही वह एकमात्र फिल्मी गीत है जो ये जलसा ताज पोशी का जुमले से शुरू होता है, यानी जानकी बाई की गजल के मतले की पहली लाइन का गीतकार एहसान रिजवी ने अपने फिल्मी गीत में प्रयोग किया। जानकी बाई की तमाम सफलताओं के बावजूद जानकी बाई को लोग छप्पन छुरी वाली कहा करते थे, क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तो उस पर एक आदमी ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर कुल 56 निशान बन गए थे। उनमें से कुछ निशान आजीवन उनके चेहरे पर मौजूद थे, जो उन्हें ता उम्र उस भयानक हादसे की याद दिलाया करते थे। जानकी बाई के मुखमंडल और शारीरिक गठन अन्य वैश्य कलाकारों की भांति मनमोहक और आकर्षक नहीं था, बावजूद इसके स्टार बनकर जानकी बाई ने इस उम्मीद को झुटलाया कि वैश्य कलाकारों को बेहद सफल होने के लिए सुंदरता के पारंपरिक मानकों को पूरा करना जरूरी है। वो ना कभी उन मानकों पर खरी उतरी और ना ही उसका उनके कैरियर की सफलता पर कोई प्रभाव पड़ा। वो तो एक दिलरुबा थी, जहां भी जाती थी अपनी आवाज और गायन से सबका दिल जीत लेती थी। जानकी बाई का जीवन उस सुरीली बुलबुल की कहानी थी, जिसके पास अत्यंत सुंदर आवाज के पंख भी थे और कभी ना मिटने वाले घाव भी, लोगों की बेशुमार तारीफें भी थी और अवसाद। उसके पास विकल्प भी थे और विपरीत परिस्थितियां भी। वो एक ऐसी महिला कलाकार थी जिन्होंने उस समय नई तकनीकों में खुद को ढालकर सफलता अर्जित की, जब समाज की सामंती व्यवस्था केवल पुरुषों की सफलता का जश्न मनाया करती थी। लेकिन जानकी बाई अपने प्रशंसकों की चहेती थी। माँ के प्रयासों से वो कलाकार बनी, हालांकि जानकी ने अपना बहुमूल्य बचपन खो दिया। बचपन में जानकी को पिता, परिवार और घर नहीं मिला, लेकिन आगे चलकर अपने बलबूते जानकी बाई ने कई मकान खरीदे और एक आलीशान जिंदगी बसर की। उन्होंने बहुत सारा वैभव अर्जित किया और उदारतापूर्वक अपनी संपत्ति दान भी की। गहराई में उतरकर उसने प्यार किया और गुमनामी में अकेले इस दुनिया से चली गई। दुर्भाग्य से इतिहास ने उनके जीवन की जटिलता के साथ न्याय नहीं किया है। जानकी बाई जैसे व्यक्ति की सच्ची जीवनी तभी संभव है जब कोई ये स्वीकार करे कि उनके जीवन की घटनाओं पर ऐसे संशय बने हुए हैं जहां हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि आखिर क्या हुआ था। उदाहरण के तौर पर उस सब पर चाकू के हमले के पीछे की प्रेरणा की कहानी के कई अलग अलग संस्करण हैं और कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कौन सा सच है। बस यही कहते हुए आज का ये अंक समाप्त करते हैं कि जानकी बाई का जीवन वास्तविक समय का जीवन था, कला से भरपूर जीवन था, परेशानियों से घिरा जीवन था और एक शानदार कलात्मक जीवन था। कला ने उनके जीवन में वहां कदम रखा जहां जीवन ने उन्हें विफल कर दिया। जानकी बाई को हमारा सलाम। तो दोस्तों यहां आकर पूरी होती है गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपने सुझावों और बहुमूल्य प्रतिक्रिया को जरूर लिखें नीचे टिप्पणी में। अगले सप्ताह किसी और गीत से जुड़ी बातों, यादों, किस्सों, कहानियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
एक गीत सौ अफसाने।
Radio Playback India.